पुरी के जगन्नाथपुरी में गंभीरा में राधा जी के भाव से आविष्ट हैं। जैसे लोहे में अग्नि प्रवेश कर जाती है और लोहा जलाने लगता है, अपने को अब लोहा नहीं कहता, आग कहलाता है। ऐसे ही साधक भक्त भजन करेंगे तो आविष्ट होकर, कैसा आविष्ट? मुरारी गुप्त जी वैद्य थे, जाति से वैद्यगिरी का काम करते थे। हुसैन साहब आता है या कौन वहाँ का बादशाह या कौन था, उसके पास में गए। उसको कुछ बीमारी थी देखने के लिए, वो बीमारी देखने जा रहे थे। इतने में उनका अर्डरली कोई सेवक मयूर पंख लेकर के उनको हवा कर, पहुंचते ही नोर पंख देखा और गिर गए। एकदम नीचे से, एकदम दो तल्ले से गिर करके नीचे जमीन पर गिर गए बाहर में। बस आप दौड़ा अपने लोगों को जल्दी से, देखो ये मरा। किसी प्रकार से उनको चोट नहीं लगी, भगवान की इच्छा, उठा करके लाया गया इनको। जब होश हुआ तब पूछा क्या हो गया, उन्होंने कहा कि मुझको मृगी का रोग है इसलिए हो गया, छिपाया। अरे मैं जानता हूँ तुम खुदा के बंदे हो, तुम इस मोरपंख को देख करके तुमको कृष्ण की स्मृति आई और उसी में तुम होकर के गिर पड़े। ये भजन है ना, मोरपंख को देखा और सोचा हाँ कृष्ण इसको अपने मुकुट में यहाँ धारण कर। उनको देख करके मयूर पंखों को उठा करके नाचने लगते हैं वृंदावन, और कृष्ण बंसी पर शांत कर देते हैं। एकदम सारा दृश्य उनके अंदर में आ गया और वो बेहोश होकर के ये जगत में मेरे उस जगत में चले गए। अरे इतना ना हो तो भोगा तभी तो आवेश हो। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन क्षेत्र से ये दिखा कैसे आवेश रहे, पहले एक बार दिखलाया था और फिर चैतन्य महाप्रभु के अंतिम समय का वर्णन करता है। ये सब सुन करके अपने जीवन को हम वैसे ही बनाने की चेष्टा है। चैतन्य महाप्रभु दिन रात आत्मस्फूर्ति नहीं कृष्ण भाव आदि, मैं चैतन्य महाप्रभु हूँ, मैं सन्यासी हूँ इसकी भावना नहीं आती। उनको क्या आती है, मैं राधा जी हूँ। और कृष्ण को कभी देख रहे हैं, कभी विरह में उनको सप्त हो रहे हैं, ऐसे ही सप्त में भावों में मग्न है दिन रात। उनको बाहरी स्फूर्ति कोई है ही नहीं, ये ज्ञान नहीं है कहाँ है क्या कर रहे हैं नहीं। कभू भावे मग्न, कभू अर्धभाग्य स्फूर्ति, कभी भाव में मग्न। क्या भाव में, कृष्ण आ गए उनकी आंखें बंद कर दी, या कृष्ण आ गए उनके साथ में छेड़खानी करने लगे। इसी तरह से नाना प्रकार के भाव उनके हृदय में आ रहे हैं। और कभू भाग्य स्फूर्ति, कभी अर्धभाग्य अवस्था में उसको देखा और इसकी भी स्फूर्ति नहीं है, और बारी वाली भी अब रो रहे हैं, कृष्ण ने छोड़ करके कहां चले गए, रोने लगते हैं। हम लोगों को अपने साधन भजन में जब मन नहीं लगता तो रोते नहीं है। भगवान के नाम लेने से भगवान की स्तुति आएगी तो बहुत दूर की बात। नयन अंगल दास सुधारया बदन अंगद गया, ये बहुत ऊंची बात है। यदि नहीं वो नहीं आता है कि है मैं अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से नाना प्रकार की कामनाओं में और क्रोध में ऐसा आविष्ट हूं कि मुझे कृष्ण भी नहीं जाता। मेरे जैसा पापिष्ट जगत में कोई भी जन्म नहीं किया, मैं जगाई मधाई से भी अधिक दुष्ट और मलिन चित्त वाला, इसकी भी अनुभूति नहीं आती, तब तो भजन हो जाता है। कभी ये भी नहीं आता है हमारा भजन नहीं, ये भी नहीं आता, बस मस्त होकर के खाते पीते सोते आराम करते हैं, भजन की कोई चिंता नहीं। कभी दिन में कभी माला ले लिया तो उन्हें ऊपरी रूप से नहीं लिया तो कोई बात नहीं। मैं तो बहुत से लोगों को जानता हूं जो हरिनाम दीक्षा भी ले लिया है और दिन में एक बार भी माला नहीं फेरती, या फिर रख दिया है चूहे काट गए सब। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, भजन नहीं करता। कहते हैं तो ऊपरी मन से प्रभु राम हमको घोड़ी दिला दे, इसलिए हरि नाम करते हैं घोड़ी दिला दे, घोड़ी दिला दे। जाति चीजों को माने के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान के लिए सचमुच में नहीं रोते हैं, दुख तो होना चाहिए, हाय हाय मेरा गुरु के समय पहुंच करके भी हम लोगों को नहीं हुआ। अब कहा महाप्रभु भाव में मग्न है, कभी शब्द बाह्य में, और हम लोगों को कभी आंख में आंसू नहीं आता, रोमांच नहीं आता, दुख भी नहीं होता कि हमने भजन नहीं कुछ किया, बड़े दुख और पलटा रहता कभी बात ये छोटी। तीन रीति प्रभु स्थिति, प्रभु सप्त में भाव में, कभी भाविष्ट, कभी आधा ज्ञान होता है तो रोने लगते हैं, हाय कृष्ण हमें छोड़ करके कहां चले गए, और कभी बार की स्फूर्ति आ जाती है, मैं कहां था, क्या कर रहा था, हमको तुमने वृंदावन से यहां पर क्यों लाया, मैं जमुना में कृष्ण के साथ में लीला कर रही थी और तुमने वहां से हमको लिया। फिर रोने लगते हैं, स्नान दर्शन भोजन देश स्वभाव है, कुमार जनो सतत स्थिर है, कुमार जैसे उसका एक बड़ा भारी चक्का होता है और उस पर मिट्टी रख जाता है बीच में और एक डंडा ले लेता है, डंडे का अगला भाग नुकीला होता है और उस चक्र में थोड़ा सा कहीं छिद्र होता है, थोड़ा सा छिद्र नहीं मैंने ऐसा गड्ढा जाए और उसमें लगा करके एक दो बार ऐसे करके छक ऐसे खेच और एकदम छिद्र गति से वो चलने लगता है और उसमें मिट्टी से जैसे होता हाथ से लेकर के कभी घड़ा कभी कुल्लर चकोरे कभी कुछ जैसी इच्छा होती उसी में से झट और सूता हाथ में रहता ऐसे लगाया और खट कर दिया नीचे रख दिया फिर दूसरी से जुड़ कर दिया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी का स्नान भोजन ठाकुर जी का दर्शन करने जाना और इधर उधर चलना फिरना लोगों से बातचीत करना ये क्या स्वाभाविक होता हूँ, उनको पता ही नहीं जब तब मैंने भोजन किया कि नहीं किया, मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने गया कि नहीं गया, आज रात में सोया कि नहीं सोया, पानी पिया कि नहीं पिया, कुछ ज्ञान नहीं। अंदर तो इसके लिए हमको तरसना तो चाहिए, ये तो मैंने तरसना हम तरसते भी नहीं। ये सब चीजें रूप सनातन को देखो, एक दिन सभा में बैठे थे, भागवत की कथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोपियों का वह प्रसंग था भ्रमर गीत का और राधा जी देहनी होकर के एकदम पागलनी होकर के विद्युन्माद में बक रही है, ऐसा उन्होंने पाठ और इसकी व्याख्या की जैसे शोक आ जितने थे सभी रोग रोने लगे, अपने आप रोने लगे, आंसुओं की धारा सब में निकलने लगी, कोई के मुख से नाक से पसीना, किसी को आंख से आंसू, किसी को रुमाल, किसी का कुछ ये होने लगे। रूप गोस्वामी ऐसे थे जो चुपचाप बैठे और बाकी सबको विचार दिख रहा है, कोई एक तटस्थ भक्त से देखा जिसे सभी तो भाव में बह रहे हैं और रूप गोस्वामी चुपचाप ऐसे आंख खोलकर कर बैठे हुए हैं, क्यों, अरे बचे हैं कि मर गए, जरा देखूं तो बस जा करके देखा नाक से श्वास क्यों निकला, वो यहां पर फफोले, आंख बंद है आंख खुली हुई है, देख रहे हैं मालूम है जो जागृत हैं, किंतु भाव कहां गया, वो वहां भरे ही नहीं है, कितना तीव्र गति से और गर्म श्वास निकल रहा है, वो भी लंबी लंबी लंबी। भाव को तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, उन भावों को लाने चाहिए, इसीलिए तो हम आश्रम में आए हैं, इसीलिए हम सदगुरु पदाश्रय करते हैं, इसलिए सदगुरु पदाश्रय नहीं करो कि हमको धन मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा, लड़की लड़का की शादी हो जाएगी, हमारी शादी हो जाएगी, बड़े आराम के साथ में रहेंगे, वैभव मिल जाएगा, इसके लिए नहीं करो, उसके लिए ऐसे गुरु के पास में जाओ जो ये वो चंद्रा स्वामी या कौन लिखा है उसके पास में जाओ, वो ये सब चीजें उनको दे दे। यहाँ पर भी ऐसे बहुत से हैं जो ये दे, हम लोगों के पास में ये सब चीजें, इसमें न राजनीति है न अर्थनीति है न और कोई नीति है, बस एक ही नीति है कृष्ण की भक्ति की रीति। इसलिए महाप्रभु स्वभावतः वो कर रहे हैं जगत में। एक दिन प्रभु करे जगन्नाथ कर महाप्रभु जी दर्शन करते हैं। हम लोग को दर्शन करते हैं कोई भावना भी नहीं, तनिक भी हृदय में कोई उल्लास, कोई प्रेम की तरंग कुछ नहीं। उल्लास भी तो होना चाहिए साधु जी के दर्शन। आज आज किशोरी जी कैसी, कैसा उन्होंने धारण किया, और किशोर कैसे हैं, आज पाग बांधे हुए हैं, बताने की होगी है। महापुरुष तटस्थ होकर के देख रहे हैं, भाव में मग्न है। इस तरह से तो कुछ भाव तो आना चाहिए। कहां ये भाव आएगा, किस हृदय में आएगा? जिसका हृदय पवित्र हो, भगवान के लिए जिसका हृदय समर्पित हो, उनके लिए होगा। भाई इसके लिए चेष्टा करो, इसके लिए हम लोग जीवन दान। एक दिन प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे थे? जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ने क्या, ब्रजेंद्र नंदन और देवकी नंदन में, वसुदेव नंदन में अंतर है। साधारण काल से ये लोग नहीं जानते, ये कल गौड़ीय वैष्णव लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता। देखो ब्रजेंद्र नंदन का मतलब है उनको देख रहे हैं सीध में मोर, हाथों में बंसी है। कोई चीज मनी मन में चिंता कर रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हैं? ईश्वरी जी कहां कहां मिले, त्रिभंग रूप में खड़े हैं, ये सब चीजें रहेंगी तो ब्रजेंद्र नंदन को समझो। आज यदि उनके हाथ में चक्र सुदर्शन इत्यादि चार अस्त्र हो, द्वारकाधीश हो, तो समझो ये वसुदेव नंदन है। उनके साथ में राधा जी नहीं रहेगी, बंसी नहीं रहेगी हाथ में। एक आदमी हमसे कल या परसों पूछ रहा था, जब कृष्ण मथुरा चले गए तो उनकी बंसी को ले गए या छोड़ गए? यदि वो बंसी को कोई कोई रात वाले दिखलाते हैं, बंसी को छोड़ गए थे यशोदा मैया के पास, और जब कृष्ण मथुरा वृंदावन चले गए तो ये यहां से किसी के द्वारा उस बंसी को और वो लकुट को और मोर मुकुट इत्यादि को वो किसी के द्वारा वहां पर भिजवा रहे हैं। ऐसा कोई होता है रात में? होता है ना,
दाऊ जी के लिए भेजा ना।
यहाँ से उनकी जितनी ये सब चीजें दाऊ वहां पर द्वारका में भेजा, मथुरा में भेजा, ये सर्वथा सिद्धांत के विरुद्ध और भक्ति का ज्ञान का नहीं होना है। इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। जिनको भक्ति नहीं है वो लोग भी जाए। अरे वो तो जाने के समय में ही गोपियों ने कहा, गोपियों से उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं जरूर आऊंगा कल या परसों उसको मार करके जरूर लौटूंगा। जैसे इसका प्रमाण क्या है कि तुम आ गए? और जैसे देखो हमारी प्यारी बंसी लकुटी और मकुट तुम्हारे चरणों में मैं देकर के जाता हूँ राधा जी को, और सब कुछ उनके चरणों में उठाव कर दिया। राधा जी को विश्वास मिले, मुरली कभी नहीं छोड़ता है, क्या प्राण छूट जाए किंतु मुरली नहीं छूटेगी। और इसने मुरली को हमारे पास रखते थे जोत लोग करके आएगा ही, यदि ले जाना ही होता तो अपने साथ में ले जाते मुरली। यदि मुरली जाएगी तो समझो जा राधा जी भी जाएंगे, बिना राधा जी के मुरली कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती। इस चीज को समझना चाहिए, जहां पर गोपियां नहीं है वहां पर मुरली नहीं जा सकती, उनकी लपटी नहीं जा सकती, उनके मोर मुकुट नहीं जा सकता। वो तो तब जाएगी और जाएगा जबकि राधा जी और गोपियां जी वहां पर जाएंगे, और इनके लिए जाना असंभव है। यह रसा हास दूर से जाना, इसलिए नहीं जानने के कारण ऐसा। तो जिस समय वो देखते हैं अकेले न श्याम को वहां जगन्नाथ जी को, तब देखते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, और उनको उसी भाव मैं राधा हूं और ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम, और यदि किसी कारण से उन्होंने बलदेव जी को और सुभद्रा जी को देख लिया वहाँ पर वेदी के ऊपर में, बस उनका यह भाव दूर हो जाता है। कहते हैं कि ये तो वसुदेव जी के पुत्र बलदेव जी और सुभद्रा जी को लेकर के यहाँ द्वारका में है, बस उनका मन खराब हो जाता है, एकदम विरक्त हो जाते वो। हम लोगों को दोनों में से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं आता, न भाव होता है न कुछ आता है, न कुछ भक्ति के लिए होता है। जिन्होंने अपना सर्वस्व सारा क्षण भक्ति में एकदम नियोजित करता है, वो लोग सब तो कुछ कुछ समझेंगे, दूसरे ये सब चीजों को नहीं समझेंगे। जब यहाँ पर हम लोग देखें कोई भाव आता है किसी न, कोई भाव न कुछ, न सेवा करने की वासना तक नहीं आती है। इसी समय में चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का आज दर्शन कर रहे हैं। कैसा दर्शन कर रहे हैं? आ चुके जब आपने गंभीरा में थे, रात भर देखा जी कृष्ण के साथ में ये राधा जी फूल मचा रही है, क्या क्या कर रही है, आज देखा। और ठीक वैसे ही जब यहाँ पर अभ्यास के बसता उनके पैर सीधे चलते चलते यहाँ आ गए, वो नहीं जान रहे मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर भजन को देखा। एक बार एक पूरे प्रभु कृष्ण पंच गुण, कृष्ण के पंच जो गुण हैं पांच प्रकार के गुण एक साथ में, क्या थी पंचांग पंच ये गुण, आंखों से आंखों में नेत्र में कृष्ण का अद्भुत रूप माधुरी एकदम कराए, और मन के द्वारा उन्हीं के तरफ में आकर्षित हो गए। पंच ज्ञान इंद्रिय चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा और त्वचा, ये चारों चीजें जैसे सुंदर रूप आंखों को आकर्षित करता है, मधुर बोली ये कानों को खींचती है, कर्ण इंद्रिय को, रस कृष्ण में जो है वो जिह्वा अनुभव करती है रस को कृष्ण के, और चक्षु कर्ण नासिका और जीवा और त्वचा, कृष्ण कितने कोमल हैं कैसे हैं ये त्वचाओं का काम है। ये पांचों चीजें भागवत में बतलाई गई कि बद्ध जीव के लिए ये पांच पत्नियां हैं, किसी ने पांच बीस लड़कियों से शादी कर ली और प्रत्येक अपने अपने तरफ में उनको खींच रही है, और वो जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। एक के पास जाए एक से प्रति करके चार बिगड़ गए, फिर दूसरी एक से किया तो और चार बिगड़ गए, इसी तरह से उनका जीवन बड़ा भारी कठिन हो जाता है धारण करना। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी यहां कर रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कर रहे हैं, संत दामोदर अपने कर्चा में कर रहे हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु की ये पांच इंद्रियां कृष्ण के इन पांच विषयों को आकर्षण कर रही है, बल्कि कृष्ण के ये पांच चीजें उनके पांच इंद्रियों को आकर्षण कर रही है। एक मन पंच दिगे पंच गुणताने, मन तो एक ही है, इंद्रियां पांच पांचों तरफ से खींच रही हैं। उसी समय में जगन्नाथ जी का भोग लगा, हेनो काले ईश्वर एर उपल भोग शरीर भक्तगण महाप्रभु खरे ले जाए, भोग लगाया गया ठाकुर जी को, भक्तों ने इनको पकड़ करके और किसी प्रकार से गंभीरा में इनको लौटा करके लाया, स्वरूप परमानंद दुई जन ले स्वरूप दामोदर और राय राम अतः ललिता और गीता इन दोनों को लेकर महाप्रभु ऐसे पकड़ करके रोने लगे, विलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, दुहान कंठ दरिया कृष्ण रियोगे राधा उत्कंठित मन। अब वहां पर बजेंद्र को मंदिर में देखा था, अब यहाँ पर आ गए, बस कृष्ण हमें छोड़ करके कहीं चले गए, कृष्ण के वियोग में अत्यंत उत्कंठित हो गए। दिशाखारे कहे, दिशाखारे कहे मैंने राय रामानंद को कह रहे हैं, अपन उत्कंठा कारण अपने दुख का कारण उत्कंठा का कारण उनसे बतला रहे हैं, तो पड़ी आपने करे मनस्ता। क्या श्लोक उसका तात्पर्य बतला रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य अधर रस ज्ञान माधुर्य कहने न जाए देखी लोभे पंचजन एक अष्टमोम चरिपंच पंच दिके धार। कहते कृष्ण का रूप कृष्ण की मधुर वाणी कृष्ण का स्पर्श कृष्ण की अंगों की सुगंध और उनके अधर का अमृत ये चार मानव चार घोड़े हैं चार घोड़े या पांच घोड़े और उस पर चैतन्य महाप्रभु का मन चढ़ाए पांचों के धर्म। अब एक मन पांच घोड़े किधर जाएगा घोड़े जा रहे हैं इधर उधर आदमी का मन अत्यंत विबल हो गया है। ठीक महाप्रभु जी की ऐसी दशा सखी है सुन मोर दुखर का चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में अभिष्ट कर देता है सखी हमारे दुख का कारण सुन मोर पंच इंद्रिय गण महालंपट दस्युगण सबे कहे हर हर पर धाम महाप्रभु जी का रहे भाव में भी भोर होकर सखी मैं अपने दुख का कारण बतला मोर पंच इंद्रिय बस हमारी जो पांच इंद्रिया चक्षु कर्ण नासिका जीवन जिसे हम संसार में अभी बद्ध होकर के डूब रहे हैं ये कहते हैं भक्तों के लिए वही उत्कर्ष के कारण होते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारे पांच जो इंद्रिया हैं महालंपट ये दस्यु डकैत हैं सबे कहे हर और धन ये सभी पांच इंद्रिया कहती हैं कि दूसरे का धन हरण कर एक अश्व एक खन पांच पांच विजेता ने एक मन कौन बिगे जाए ये पांचों इंद्रिया कृष्ण को के रूप को कोई आंख लूटना चाहती है कान उनका
शब्द
ना उनके सुनकर सुधर इसी तरह से पांच इंद्रिया पांचों तरफ में खाए चलेंगे हैं महाप्रभु का एक मन दिवस हो जाता है। एक काले सबेटा ने गिरे घोड़ा पराने एक दुख सहन न गए इस दुख को मैं नहीं सकता इंद्रिय न कोई रोष यहां सवार कहां रो दो कृष्ण रूपादि महा आकर्षण कृष्ण का रूप इतना सुंदर है यह कभी कोई सखी माने चंद्रावली इत्यादि कह रहे कृष्ण बड़े सुंदर आज मैं इनको पूर्ण रूप से नीचे से मस्तक से लेकर के नीचे तक आज उनको दर्शन करके आए खुशी का वर्णन कर रही है। राधिका जी की कोई सहेली कहती है कि तुम बड़ी धन्य हो जो आज कृष्ण को परिपूर्ण अंगों के समेत देखा। हमारी सखी तो ऐसी है जो कृष्ण के नेत्रों को देखते हैं तो उसी में उनका मन अटक जाता है यदि कभी उनको वस्त्राक्षर को देखा तो वहीं अटक गया कभी पैरों की तरफ में गया या कमर की तरफ में वहीं अटक गया। दूसरा आज तक हमारी सखी ने कृष्ण को पूर्णांग के रूप में कभी नहीं देखा ये राजा जी का है या गोपियों का ऐसा होता है महाप्रभु जी उसी चीज को जहां पर उनके नेत्र गए वहीं पर अटक गए और एक ही समय में यदि कृष्ण का रूप गंध उनकी मधुर बोली अंगों का कोमल स्पर्श इत्यादि यदि हो गया तो सर एक मन क्या कर एक ही चीज में वो लग जाता है इंद्रियों का इसमें कोई दोष नहीं है। कृष्ण के रूप इत्यादि पांचों चीजों का विषय ही ऐसा है ऐसा आकर्षण है कृष्ण के नाम में रूप में गुण में लीला इत्यादि में समस्त अंगों में जो आंखें सहज भी परवश लग जाती हैं। रूपादि पांच पांचे ताने के लोग घोड़ा रूप पराने मूर देह ना कर रहे जीवन इसी प्रकार से ये पांचों इंद्रियों को कृष्ण का रूप इत्यादि जो है ऐसे आकर्षण कर रहा है। ये घोड़ा कौन अब इसका प्राण ही नहीं जाता, किधर जाए किधर नहीं जाए। इसी तरह से कह रहे हैं कृष्ण रूपामृत सिंधु, कृष्ण का रूप कैसा है, अमृत का सिंधु, कहां तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबा, उसका एक बिंदु जगत को डुबा सकता है। श्री जगत की जतो नारी सार्थित उच्च बिंदु कहां डुबाई आगे उसी धार, इतना उनका सिंधु अमृत का सिंधु अहंकार, विश्व की सारी नारियां जो सुंदर है वो पहाड़ के समान ऊंची उनका चित्त, किंतु उसको भी सबको लेकर के डुबा, हिमालय पर जैसे समुद्र डुबा देता है 7 माइल ऊंचा होने पर, 7 माइल से भी ऊंचा ये समुद्र गहरा है, ऐसे ये कृष्ण का रूप। इस तरह से प्रत्येक चीजों का ये वर्णन करें। आज रात हो गई, आज यही तक रहते हैं, आगे
राधा जी के जिस भाव को लेकर के आए थे उसमें दो चीजें थी, एक तो स्वयं राधा जी का भाव था, राधा भाव से कृष्ण के मातृत्वों का आस्वादन था, और राधा जी का प्रणय कैसा है, और उन मातृत्वों को आस्वादन करके क्या उनको आनंद, कैसे आनंद होता है राधा जी के मन में, इन तीन चीजों के लिए वो राधा भाव है। और उसमें से शिव के बहुत इसके शिव एक बहुत दूर तक जाने वाले वो जीवा जीवों पर करना करके उस प्रेम की एक छीन जीव को देना चाहते, वही है अनर्पित करणी किरा। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अपने भाव में है, सती पुत्र के रूप में, सन्यासी के रूप में, और सर्वत्र नाम का प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों को परस्त कर, वहां पर कृष्ण भाव राधा भाव में से कोई भी नहीं, साधारण रूप में कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं, और जगत दार्शनिकों को जो जैसा है, बड़े बड़े विद्वान हैं, दार्शनिक है, उनको दार्शनिक तत्वों के द्वारा पराभूत करके आकर्षण कर नाम के और प्रेम को देने, जो साधारण व्यक्ति है उनको केवल नाम दे रहे हैं और उसके माध्यम से प्रेम दे रहे हैं, तत्वदर्शी जो लोग हैं उनको तत्व के माध्यम से उनको ले आकर के अत्यंत उसके प्रेम को ले, जो जैसा है वैसा ही कर रहे हैं। तो उस समय में नवदीप लीला के अधिकांश भाग में या दक्षिण के प्रचार इत्यादि में रामानंद के प्रसंगों को छोड़ करके और बाकी जो समस्त देश के वासियों को वैष्णव कर दिया, इसमें चैतन्य महाप्रभु वाह्यतः जैसे हैं, सती के पुत्र सन्यासी हैं इस रूप में वो हुए। कहीं कहीं राधा जी की दासी की स्तुति उनमें होती है, उस समय में जब होती है तब वो जीवों पर करुणा करके वो प्रेम धन देते हैं, अनर्पित करें की राह। और ऐसे स्थलों में जहां राधा जी का अभिमान हो रहा है वहां पर उस प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं, राधा जी का प्रणय तथा उनके माधुर्यों का आस्वादन, और उनका आस्वादन का कैसे आनंद उनको होता है इस चीज को राधा जी के भाव का आस्वादन। यहां पर राधा जी के किंकरी का भी मान नहीं, राधा जी का स्वयं अभिमान। यहाँ पर पहले लिखा कृष्ण वियोगे राधा उत्कंठित मन, विशाखा के कहे आपने उत्कंठा था, विशाखा को कौन कह सकता है, राधा जी का पित्त विशाखा को और ललिता को कोई कह सकता है अपने भाव को? तो यहाँ पर कोई साधारणी वो भी अपने मन को भाव विशाखा जी से बतला रहे हैं, इसलिए यहाँ किसका प्रसंग है, ये राधा जी के भाव में उन्मत्त है। उद्घूर्णा किस अवस्था में होता है, महाभाव की स्थिति, वो भी रूढ़ भाव, तो समझो ये यहाँ के चंद महाप्रभु अधिरूढ़ भाव में, अधिरूढ़ भाव में उपस्थित होकर के और कृष्ण के वियोग जनित भावों को यहाँ दिखला करके राधा प्रेम की भावना को अर्पण कर। कृष्ण का भी हो राधा उत्कंठित कौन, राधा जी का उत्कंठित कैसे,